नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का निधन, 87 वर्ष की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित, लोकसभा ने कल इसे दी थी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने पर खुशी जताते हुए इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का आज मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने 87 वर्ष की उम्र में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। फिल्म और सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें देश के सबसे बड़े फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। अभिनेता के पुत्र कुणाल गोस्वामी ने बताया कि उनके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों के लिए वे विख्यात थे और उन्हें इसके लिए भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, शहीद, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पत्थर के सनम सहित उन्होंने अनगिनत फिल्मों में अभिनय किया। मनोज कुमार ने बड़ी संख्या में फिल्मों का निर्देशन और निर्माण भी किया। वे अपनी विशेष कला और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने। एक तारा बोले तुम क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन बात है लंबी मतलब गोल, खोल दे ये सबके पोल तो फिर उसके बाद।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है। 128 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में विधेयक पारित होने की घोषणा की। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है।
हमने जो नया प्रावधान लेके आया उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो भी जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिलकर के वक्फ बनेगा। जो पिछले वर्क है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शेल बी वुमेन।
श्री रिजू ने कहा कि वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और बोर्ड तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाना है। विधेयक का लक्ष्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर बेहतर प्रशासन के लिए वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि केवल मुस्लिम समुदाय ही वक्फ से लाभान्वित होंगे और वक्फ परिसंपत्तियों के प्रबंधन में किसी भी गैर मुस्लिम का हस्तक्षेप नहीं होगा। संसद ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 का स्थान लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया वक्फ कानून बनने से सामाजिक, आर्थिक और न्याय में पारदर्शिता आएगी और समावेशी विकास को बल मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि यह विधेयक वैसे लोगों की आवाज बनकर उन्हें मजबूती प्रदान करेगा जो अब तक वंचित थे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद देश भर में प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया है। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष शारिक अदीब ने कहा है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और शासन में जरूरी पारदर्शिता लाएगा।
वक्त कहीं नहीं जा रहा, वक्त महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा, मुसलमानों के हाथ में रहेगा। बस उसमें जो गलतियां हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो सही होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट बेवा को, गरीब बच्चों को और मिस्किनों को, अन्नादारों को, पसंदा मुसलमानों को उनका हक और हकूक देने की बात करती है तो इसमें इतनी घबराने की बात क्या। बस ये है, कुछ लोगों के पास में ये पूरी पावर थी, अब वो चली जाएगी, इसलिए लोग हंगामा कर रहे हैं।
पूर्व सांसद और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एजाज अली ने कहा कि विधेयक गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है।
वक्त दिया गया था गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए दिया गया, जो कमजोर हैं तबके उनके लिए दिया गया था कि उनकी पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई इसके लिए इस्तेमाल। लेकिन इन अहदेदारों ने उसको अपना प्रॉपर्टी समझकर अपना यूज किया वक्त के नाम पर। न उससे समाज को कोई फायदा हो पाया, न सरकार को ही कोई फायदा हो पाया। सरकार ने तो वक्त दिया ही है, आप उसका जो कानून के हिसाब से जो रजिस्ट्री होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको अवेलेबल कराइए। लड़ने झगड़ने से कोई फायदा है? यहाँ के जो आम अफसरान हैं, जो लेवल लेवल के लोग, वो तो मदद करना ही चाहते हैं। अगर आप लेने जाइएगा रजिस्ट्री का कागज तो आपको निकाल के देंगे, आपकी मदद करेंगे।
वक्फ संशोधन विधेयक पर विभिन्न दलों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा और जदयू ने इसे सही कहा तो राजद ने इसे पूरी तरह गलत बताया। जदयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय में भ्रम फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है।
गृह मंत्री अमित शाह जी के भाषण के बाद जो लोग भ्रम फैला रहे थे वो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई और लोगों को पता है कि कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कन्फ्यूजन कर रहे थे।
वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित होने पर राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि संसद में कृषि कानून भी पारित हुए थे। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की तरह ही लोगों के मन में इस कानून के लिए भी असंतुष्टि है।
बहुमत आने का मतलब नहीं है कि हर चीज का ज्ञान आप ही को है। एक संजीदगी, एक बड़ा हृदय दिखा करके आप पूरे डॉग विसिल को आधार बना करके जो करने की कोशिश कर रहे वो कतई उचित नहीं था। फिर भी आपने संख्या बल अर्जित करने की कोशिश की, हालांकि वो भी बहुत अच्छा संख्या बल तो राज्यसभा में नहीं है अगर वो आप इंट्रोस्पेक्शन करें। लेकिन हम ये कहेंगे अभी भी लोगों के अंदर जो मन में असंतुष्टि है नागरिकों को, अगर उसको दूर नहीं किया तो इसका हश फॉर्म लॉस की तरह ना हो।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ आज उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो गया। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर की प्रमुख नदियों गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और सोन के अलावा तालाबों, जलाशयों और अस्थायी घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जगह जगह मठ और मंदिरों की सजावट की गई थी। व्रतियों ने अपने घरों के बाहर और छठों पर बने अस्थायी जलाशयों में भी अर्घ दिया। इसके बाद छठ व्रतियों ने पारण के बाद प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न हुआ। इस दौरान पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना रहा। छठ गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। जिला प्रशासन, विभिन्न छठ पूजा समितियों और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े लोग भी व्रतियों की सुविधा और उनके स्वागत में जुटे रहे। विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न घाटों पर एकत्र हुए। पटना के बाढ़ स्थित पुण्यार्क मंदिर, मसौढ़ी अनुमंडल स्थित सूर्य मंदिर, दुल्हिन बाजार के उलार सूर्य मंदिर, औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव सूर्य मंदिर, नवादा के हड़िया सूर्य मंदिर, नालंदा जिले में बड़गांव के बालार्क और औंगारी गांव स्थित अंगार्क सूर्य मंदिर और बक्सर के रामरेखा घाट पर भी बड़ी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु भगवान भास्कर की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। इधर हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया कि जिले के ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक स्थल देव के पवित्र सूर्य कुंड में आज प्रातः उदयमान सूर्य को व्रतियों ने अर्घ अर्पित किया।
जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल देव के पौराणिक सूर्य कुंड में चैती छठ व्रत के अवसर पर आज सुबह करीब 7 लाख छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया। देश के विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, झारखंड के कोने कोने से आए छठ व्रतियों की ओर से आज सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किए जाने के साथ ही 4 दिनों का यह पवित्र अनुष्ठान संपन्न हो गया। पूरे मेला क्षेत्र और मंदिर परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर।
नालंदा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के बड़गांव और औंगारी सूर्य मंदिर परिसर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया।
चैती छठ व्रत पर्व पर आज भारी संख्या में छठ व्रतियों ने जिले के प्रसिद्ध सूर्यधाम बड़गांव और औंगारी सूर्यधाम मंदिर में उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। श्रद्धालु बड़गांव और औंगारी सूर्यधाम में तंबू लगाकर पिछले 4 दिनों से यहां डेरा डाले हुए थे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण लोगों को कड़ी धूप से राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल से दिन का तापमान बढ़ेगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान गया, नवादा और जमुई जिले में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गोपालगंज, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान है।
अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के गया, नवादा एवं जमुई जिले में हल्की वर्षा होने की संभावना है एवं राज्य के गोपालगंज, बक्सर, कैमूर एवं रोहतास जिलों के एक या दो स्थानों में मेघगर्ज वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है।
पटना चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग की ओर से आज बिहार ट्रोपोकॉन 2025 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय है एचआईवी पॉजिटिव मरीजों में परजीवी संक्रमण, एक बढ़ता हुआ खतरा। इस सम्मेलन में देश भर से 200 चिकित्सक शामिल हो रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्यसभा में भी वक्फ विधेयक पारित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने विधेयक के पारित होने पर लिखा है राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पर मुहर। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की लगी मुहर, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आधी रात को पारित। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है 40,000 शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं राज्यकर्मी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का निधन, 87 वर्ष की उम्र में मुंबई में ली अंतिम सांस। राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित, लोकसभा ने कल इसे दी थी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने पर खुशी जताते हुए इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। और उदयीमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।